कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने भी हमारा चैप्टर शुरू से लेके एंड तक करा, एंड वेलकम यू टू एवरी वन इन द 10th चैप्टर ऑफ मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। और जो आज पहली बार आए हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हम तो लीगैलिटीज देख के आए थे, तो मैं उनको बता दूं हमारा इवेंट मैनेजमेंट का एक फ्री कोर्स है जिसका नाम है मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप यहाँ जाके जरूर देख लेना। और बढ़िया बात यह है कि आप हमारा कोर्स करते करते सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए फिर से यहाँ पे एक वीडियो आ गया, उसे ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं आज के कोर्स में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले आज हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। पहला कि हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में आओगे तो आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करवाएं। उसके बाद जो लीगैलिटीज़ में दूसरी चीज़ आती है कि जब भी कोई फंक्शन होगा तो कौन कौन से लाइसेंस लेने चाहिए। तो आज हम और दोनों टॉपिक के ऊपर समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो कंपनी को रजिस्टर करने में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये कि हमें किस टाइप के अंदर कंपनी को रजिस्टर करना है। इंडिया में हमारे पास 3 टाइप की कंपनियां होती हैं जिसके अंदर हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर कंपनी के अंदर जाके रजिस्टर करना है, हर टाइप के अंदर जाके रजिस्टर करना है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, मतलब करंट सिचुएशन पे कि आप किस टाइप के अंदर अभी आप करवा सकते हो रजिस्टर्ड। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार, अगर मान लो सपोज दैट आपने एक रजिस्टर करवा लिया, आपको सोल प्रोवाइडर में आपको चेंज करना, कर सकते हो चेंज, राइट? तो सिचुएशन बदलेगी, आप स्टाइल ऑफ द कंपनी बदल सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को समझना कि हम कितने टाइप की कंपनियां होती हैं और किस टाइप में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और किस टाइप में आपको नुकसान मिलेगा, ठीक है? तो नुकसान फायदा दोनों होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। हम आज की वीडियो में दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप की कंपनी अभी रजिस्टर करवानी ज़्यादा बेस्ट होगी, तो आप उसी को चूज करके वही रजिस्टर करवाना। तो शुरू करते हैं हमारी पहले टाइप की कंपनी से जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जिसके नाम से ही क्लियर है, सोल मतलब अकेला बंदा, जब अपनी कंपनी शुरू करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप भी सोच रहे हो कि हाँ मेरे को भी सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवाना चाहिए और मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, तो आप हाँ अपनी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और रजिस्ट्रेशन का क्या थोड़ा प्रोसेस है, तो उससे आपको इजी हो जाएगा कि इसे करवाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज मतलब क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्टर करवाते हो। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इजी टू फॉर्म, मतलब बहुत ही इजीली आप इस कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हो। कैसे? आपको बस एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जिस जगह पे आपको रजिस्टर कराना है वहाँ का एनओसी या रेंट एग्रीमेंट, तो बस ये 3 डॉक्यूमेंट से आपकी कंपनी होगी रजिस्टर। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेंट पे ही जगह लेनी है, आप अपने घर के एक लोकेशन के नाम से भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरा पॉइंट जो एडवांटेज का है वो ये है, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस होता है, मतलब लाइक कंपनी रजिस्टर करवाने में आप सोचते होगे 10,000 लाख इतना पैसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। सबसे सस्ता तरीका जो कंपनी रजिस्टर करवाने का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। थर्ड नंबर पे जो एडवांटेज आता है वो ये है कि फ्यू रेगुलेशंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको ज़्यादा लीगैलिटीज में नहीं बांधती, वो कहती है कि अगर इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है तो करने दो, जब वो थोड़ा बढ़ेगा तब हम लीगैलिटीज ज़्यादा करेंगे, तो लीगैलिटीज बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती हैं, ठीक है? तो ये थे हमारे 3 एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर, मतलब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और आप के बिजनेस में लॉस हो गया और आप पे नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक आपकी घर की प्रॉपर्टी, जो भी आपका पर्सनल एसेट है, उसको बेच के भी वो रिकवर कर लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी कंपनी शुरू भी नहीं करते, और ये बहुत ही बड़ा कारण है। दूसरा जो हमारा डिसएडवांटेज है वो ये है कि लिमिटेशन ऑफ कैपिटल रेजिंग, मतलब आप जब किसी से पैसा लेने जाओगे तो वो हमेशा ये देखेगा कि आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहेगा या लोन मिलने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप एज एन कंपनी के बेसिस पे जाओ तो, ठीक है, अगर आपके पास घर पे प्रॉपर्टी है वो है तो डेफिनेटली लोन मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला फॉर्म जिसमें हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीका जिससे आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो, पार्टनरशिप। और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब भी आपके साथ दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कंपनी शुरू करना चाहते हैं या आप एक साथ मिलके कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप जैसे तरीके से अपनी कंपनी रन कर सकते हो। और पार्टनरशिप एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दो बंदे जब मिलके काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है काम ज्यादा हो सकता है, अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं एक बार। पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इजी टू फॉर्म है, मतलब इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। इसमें भी बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, मतलब दोनों पार्टनर के आधार कार्ड, पैन और आपका एनओसी लोकेशन का। तो ऐसे बस बहुत कम लीगैलिटीज के साथ ये कंपनी भी फॉर्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है शेयरिंग द बर्डन। क्या होता है कि जब भी कोई भी काम आता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर हम मिलके काम कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, काम को डिवाइड कर सकते हैं, आधा आप कर लो आधा मैं कर लूँ, ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। अगर अकेला बंदा कर रहा है तो उसको ये भी काम भी करना है, उसको वो काम भी करना है, तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये था सेकेंड एडवांटेज पार्टनरशिप फॉर्म का। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि एक्सेस ऑफ नॉलेज, स्किल, कॉन्टेक्ट एंड एक्सपीरियंस। सपोज दैट मान लो आप और आपका पार्टनर, अब दोनों के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, हो सकता है ये टेक की नॉलेज हो सकता है इसको किसी और फील्ड की नॉलेज हो, तो जो नॉलेज होगी अब जब आप मिलके काम कर रहे हो तो आपकी नॉलेज ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी, आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी, कॉन्टेक्ट बढ़ जाएंगे और स्किल्स बढ़ जाएंगी, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब अलग अलग बंदों के साथ मिलके पार्टनरशिप में काम करोगे डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की जो पार्टनरशिप के अंदर होता है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि बिजनेस हैज नो लीगल आइडेंटिटी। अभी क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लो कि अगर मैं आपको जानता हूं, आपकी कंपनी का नाम है इवेंट यूनिवर्सिटी सपोज दैट, और ये रजिस्टर्ड है सोल प्रोवाइडरशिप पे या पार्टनरशिप पे, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, इसके मालिक के पास जो भी है वो एक कंपनी के पास है, तो मतलब जो मालिक का वो कंपनी का, जो कंपनी का वो मालिक का, जो तेरा है वो मेरा है, वो मेरा है तो तेरा, ऐसा वाला सिस्टम होता है। इसके अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होती, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, और ये छोटा सा डिसएडवांटेज बहुत महंगा पड़ता है। वो कैसे पड़ता है अभी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज आता है वो ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब लाइक अगर आपने 1 करोड़ का मतलब लोन लिया, ठीक है, पार्टनर ए और पार्टनर बी है, पार्टनर ए के पास अगर 40 लाख रुपए का रिकवरी हो रहा है तो 40 लाख उधर से, बाकी 60 लाख वहां से लेंगे, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। तीसरा जो हमारा डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि लिमिटेड एक्सेस ऑफ कैपिटल। सपोज दैट कि आप और मैं काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे को कुछ पैसा अभी निकालना है तो मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऐसी काफ़ी दिक्कतें होती हैं अगर पार्टनरशिप में काम हो, क्योंकि राय विचार सबके अलग अलग होते हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज। अब हम और बात कर लेते हैं, हमारा थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं कि अगर कंपनी की रजिस्टर करवानी है तो प्राइवेट लिमिटेड में कराओ, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो आज हम समझते हैं कि वो क्या बोलते हैं और क्या कहना चाहते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो ये लिमिटेड वर्ड है ना, यही बहुत ज़्यादा खास है, और ये खास इसलिए है क्योंकि इसके ये लिमिटेड वर्ड से आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। मतलब अगर इनकेस आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आप दो बंदे भी काम कर रहे हो, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और क्या हुआ कि आप का लॉस हो गया, तो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं सिर्फ वही जाएंगे, ना पार्टनर ए का घर बिकेगा, ना पार्टनर बी का घर बिकेगा, ना उनकी कोई पर्सनल एसेट्स के ऊपर हार्म होगा। तो प्राइवेट लिमिटेड का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम समझ लें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, और उसमें भी हम यही बेनिफिट को कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है लिमिटेड रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रिस्क बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट करा है बिजनेस में सिर्फ उसी चीज़ का रिस्क रहेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है हमारा फंड रेजिंग इजीली। मतलब लाइक क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप इन्वेस्टर से फंड लो, वीसी से फंड लो, तो फंड रेजिंग के लिए भी आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवानी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा एडवांटेज। हमारा तीसरा एडवांटेज ये है कि बिल्डिंग अ क्रेडिबिलिटी। जब आपकी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है तो लोगों को अपने आप से एक यकीन होता है कि हाँ ये कंपनी बेस्ट होगी, ये कंपनी अच्छी होगी। तो अगर आप एक लेवल की कंपनी खोलना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। और एक चीज मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, ये एडवांटेज में वैसे मैंने नहीं बतानी थी बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस प्राइवेट लिमिटेड की अलग से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं हूँ, मेरा नाम पीयूष है, मेरा पार्टनर है उसका नाम राहुल है, तो जो मेरी कंपनी है उसकी अपनी पहचान है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर पीयूष हट गया तो कंपनी बंद, राहुल हट गया तो कंपनी बंद, कंपनी चलेगी। जैसे अगर आपने एप्पल का सुना हो कि एप्पल जो कंपनी थी उसमें स्टीव जॉब ने शुरू करा और स्टीव जॉब को ही निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी एप्पल तो थी। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज पे भी। डिसएडवांटेज पहला ये है कि मोर लीगैलिटीज, इसके अंदर लीगैलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और आपको अब लग रहा है कि हाँ अब आपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट करनी चाहिए, तभी आप करना। ऐसा नहीं कि आप एकदम शुरू कर रहे हो, आपको अता पता नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड में शुरू कर तो दी, क्योंकि रजिस्टर्ड तो एक बार होगा लेकिन जो फाइलें बनेंगी वो हर मंथ हर ईयर बनेंगी, तो वो आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो मेक श्योर आप तभी प्राइवेट लिमिटेड पे रजिस्टर करो जब आप पूरी तरह श्योर हो। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें 50 बंदों से ज़्यादा को नहीं इकट्ठा रख सकते। मतलब अगर आप शेयर बांटना चाहो तो 50 तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आप पब्लिक लिमिटेड करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी ऐसी और भी तीन तरीके की कंपनियां होती हैं जिनके अंदर आप रजिस्टर करवा सकते हो, उसके बारे में भी बता दूं। उसमें क्या है कि थोड़ी लीगैलिटीज ज़्यादा होती हैं, उसको हम बाद में भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। पहला है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांस वर्जन 2013 में आया था, उसका नाम था OPC, OPC मतलब वन पर्सन कंपनी, तो उसके बारे में आप रजिस्टर करवा सकते हो। पार्टनरशिप का एक एडवांस वर्जन 2008 में आया था जिसका नाम था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आप उसमें भी चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो। उस दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड रहती हैं। और लास्ट तीसरा रहता है पब्लिक कंपनी, तो आप पब्लिक कंपनी में भी चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो। तो अब ये सारे थे तरीके, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उस तरीके में आपको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लीगैलिटीज़ की भी, कि अगर कोई फंक्शन होता है तो कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम होता है। तो शुरू करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लाइसेंस यूज़ होते हैं, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग लाइसेंस यूज़ होता है, अलग अलग इवेंट के टाइप में अलग अलग लाइसेंस यूज़ होता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे 5 कॉमन लाइसेंस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक NOC हर टाइम यूज़ होता है जिसका नाम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, तो आई एम डैम श्योर आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लाइसेंस आता है पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया, हमारा दूसरा लाइसेंस आता है IPRS द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, हमारा तीसरा लाइसेंस आता है लाउड स्पीकर लाइसेंस। तो ये आपको नॉर्मली पुलिस स्टेशन से लेना होता है, जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। चौथा लाइसेंस आता है प्रीमिसेस लाइसेंस, ये बेसिकली अल्कोहल सर्विंग के लिए यूज होता है। हमारा फिफ्थ नंबर पे जो लाइसेंस आता है वो आता है परफॉर्मिंग लाइसेंस। सो बेसिकली ये हमने 5 टाइप के लाइसेंस को देखा कि क्या क्या इनके नाम होते हैं, और इसकी डिटेलिंग के ऊपर हम एक प्रॉपर एक सीरीज बनाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम पूरा सीरीज बनाएं एक चीज को डिटेलिंग में कवर करें, तो कमेंट में लिख देना यस आई वांट प्रॉपर कोर्स। सो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम इसके ऊपर सीरीज बनाएंगे, अदरवाइज हम सीरीज नहीं बनाएंगे। और इसी के साथ हमारा 10 चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और हमारा कोर्स भी मिनी इवेंटमेंट कोर्स भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्टिफिकेट एग्जाम स्कॉलरशिप बुक पर डे इवेंट जॉब और आपको कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, सारी डिटेल्स को हम कवर करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करा तो मैं ये बोलूँगा कि आप अभी जाओ, यहाँ पे वीडियो है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो अभी के अभी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस चैप्टर एंड बाय बाय।